अच्छा 100 का नोट भी तुम दुगना कर सकते हो। कहाँ, दे करके देखो। 100 का नोट दिया, उसने 100 के दो नोट वापस कर दिए। अच्छा 100 के कितने नोट तुम एक साथ दुगना कर सकते हो? उसने कहा जितने नोट दोगे उतने मैं बना दूंगा, पर देखो अधिक नोट हो तो थोड़ा समय अधिक लगता है। तो मैंने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी 10,000 रुपए, मेरे पास 100-100 के 100 नोट थे, लाता हूं। अच्छा इसको दुगना बना सकते हो? कहा हाँ, पर तुम 100 नोट एक साथ दे रहे हो, थोड़ा सा समय लगेगा, तो तुम थोड़ा आंखें बंद करके बैठो और मैं जब तक नहीं कहूंगा आंखें नहीं खोलना। बीच में अगर तुम आंखें खोल लोगे तो फिर नोट दुगना नहीं होगा। ठीक है, मैं बैठ गया। अब देर हो रही है, आंखें खोलने का मन भी करता है, क्या हो गया, भाग तो नहीं जाएगा, पर लोभ भी है, आंखें जर खोलूं तो कहीं नोट दुगना ना हो। अब लोभ भी मुझे मार रहा है और भय भी मुझे मार रहा है, और जब देखा कि बहुत देरी हो रही है, अब देरी मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, जो आंखें खोली तो देखता हूं ना नोट है ना आदमी है, और मैं चिल्लाता हूं बड़ा ठग निकला, सारा का सारा ठग करके ले गया। पर मैं यह भूल जाता हूं कि मैं भी ठग हूं कि नहीं, बिना परिश्रम के मैं जो दुगना धन पाना चाहता हूं तो मैं भी एक ठग हूं, यह बात मैं भूल जाता हूं। अब जहां पर दो ठग मिलेंगे तो जो ज्यादा बड़ा ठग होगा वह जीत लेगा, तो दो ठगों की लड़ाई में अधिक बुद्धिमान ठग विजयी होता है। तो साधना के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में भी हम ऐसे ही ठग होते हैं। क्यों? मैं परिश्रम न करूं, गुरु जी कर देंगे ना, इतना पैसा ले लो। अच्छा जी पंडित जी कितना लगेगा जी पूजा में? हाँ इतना इतना, लो भैया हमारे लिए पूजा कर देना जी। कभी तो मैंने ऐसा नहीं कहा कि भैया मुझे भूख लगी जा तू खा ले, कभी नहीं कहता, क्योंकि जानता हूं उससे मेरा पेट नहीं भरता। पर मालूम नहीं मानसिकता मेरी कैसी है कि दूसरा पूजा कर दे तो मुझे उसका फल मिल जाएगा। तो साधना के क्षेत्र में भी हम स्वयं ठग हैं और इसीलिए हम ठगा जाते हैं। तो यहां पर हमें पूरी कीमत चुकानी पड़ती है, वी हैव टू पे द फुल प्राइस जैसा कहा करते हैं। तो यह कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है, यह ध्यान योग है, और उसके द्वारा क्या होता है? तो ध्यान योग का मतलब, जैसे हमारे मन में तो कितनी शक्तियां हैं पर वो शक्तियां प्रकट नहीं है, आज मानो बिखरी हुई हैं। जैसे हम लोग बचपन में खेल करते थे, हमारे दादाजी का आतशी शीशा होता था, तो आतशी शीशे को ले जाते थे और सूरज की रोशनी आतशी शीशे पे पड़े तो कागज जल जाता था, कपड़ा जल जाता था। क्यों? सूरज की किरणों में तो ताप है, परंतु सूरज की किरणें कागज को नहीं जला पाती हैं। आतशी शीशा क्या करता था? आतशी शीशे से, मैग्नीफाइंग ग्लास से सारी किरणें एकाग्र हो गईं, और एकाग्र होने से ताप प्रकट हो गया और ये चीजें जलने लगती हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे मन में असीम शक्ति है, परंतु मन भोथरा है, इधर उधर उसके अग्र बिखरे हुए हैं, इसलिए शक्ति का पता नहीं चलता। पर जब साधना से मैं मन की वृत्तियों को एकाग्र करके मन पर ही एकाग्र करता हूं, केंद्रित करता हूं, तब पेनिट्रेटिंग पावर आ गई और फिर मेरे भीतर की जो असीम संभावनाएं हैं वे प्रकट होती हैं। जैसे यह जो रोशनी है, यह जो प्रकाश की किरण है, इसमें पेनिट्रेटिंग पावर उतनी नहीं है, भेदन शक्ति नहीं है, कपड़े को यह भेद नहीं सकती, परंतु यदि इसी की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दे या वेवलेंथ कम कर दे तो यह एक्सरे बन जाती है, और एक्सरे बन करके मेरी चमड़ी तक को भेद जाती है। यह तो आप जानते हैं, डीप एक्सरे थेरेपी के पीछे का सिद्धांत क्या है? सामान्य आलोक किरण की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो या उसका वेवलेंथ कम कर दो, यह हवा है। अब हवा में कोई दबाव है मालूम तो नहीं पड़ता, पर जब हम उसे कॉम्प्रेस कर देते हैं तो कठोर चट्टानों को काट देती है। एयर कॉम्प्रेशन का मतलब क्या है? हमने एयर को कॉम्प्रेस कर दिया, हवा को दबा दिया, और हवा में कितनी ताकत आ गई, कठोर से कठोर ग्रेनाइट चट्टाने कट जाती हैं। मन में वैसे ही असीम शक्ति है, पता नहीं चलता शक्ति का, असीम संभावनाओं का। क्यों? इसलिए कि हम मन को देखते हैं बिखरा हुआ। तो ध्यान योग कहता है मन को समेटो, और समेट करके मन के ऊपर ही एकाग्र करो। देखोगे जब मन के ऊपर हम मन की वृत्तियों को एकाग्र करके केंद्रित करते हैं तो उसके द्वारा ध्यान योग की साधना सिद्ध होती है, और फिर यह मन मानो अपनी परतों को छेदने लगता है, और छेदते छेदते एक समय ऐसा भी आता है जब वह अपने को लांघ करके पार कर जाता है। वह अमनी मन की अवस्था है, वह चौथी अवस्था है, यह संभावना। चौथी अवस्था प्रपंचोपशमम शांतम शिवमद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा सविज्ञेयः, मांडू के उपनिषद में पढ़ते हैं, वह प्रपंच के उपशम की अवस्था है, वह चौथी अवस्था है, वह तुरीय अवस्था है, वही आत्मा है और उसी को जानना चाहिए। मानो वही, मानो यह जो ध्यान योग है हमें सीधे ले जा रहा है उसी ज्ञान योग में ही जाकर के समाहित तो हो जा रहा है, ऐसा यह अद्भुत वह चौथी अवस्था। हम देखते हैं यह जो हमारा मनोविज्ञान, कितना अद्भुत मनोविज्ञान। ठीक है, फ्राइड ने मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो अनुसंधान किए, हम उनकी जो महत्ता है उस महत्ता को कम नहीं कर रहे हैं, बल पर यह जरूर कहना चाहेंगे कि फ्राइड ने जो खोजें की उन खोजों के भीतर में उनकी अपूर्णता रह गई। आप तो जानते हैं उस अपूर्णता के कारण उनके जो पट्ट शिष्य थे, यूंग थे, एडलर थे, वे फ्राइड से कट करके निकल गए। फ्राइड ने केवल तीन अवस्थाओं को माना, मन की तीन अवस्थाएं हैं, एक है कॉन्शियस, दूसरी अवस्था को सबकॉन्शियस, तीसरी अवस्था को अनकॉन्शियस कहते हैं। मानो एक को कहेंगे चेतन अवस्था, दूसरी को कहेंगे अवचेतन अवस्था और अनकॉन्शियस को कहेंगे अचेतन अवस्था। ये तीन अवस्था स्वीकार करते हैं फ्राइड, चौथी अवस्था वे स्वीकार नहीं करते। पर हमारे यहां मनीषीगण कहते रहे हैं कि चार अवस्थाएं हैं, जीव इन तीन अवस्थाओं में तो रहता है पर चौथी अवस्था संभावना के रूप में उसमें बनी है और उस संभावना को प्रकट कर देना, उसको सही बना देना, यही मानो जीवन का लक्ष्य पा लेना है। तो कौन सी तीन अवस्थाएं? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। ये तीन अवस्थाएं, जागृत का मतलब चेतन कॉन्शियस, सुषुप्ति या जो स्वप्न अवस्था का मतलब सब कॉन्शियस अवचेतन, और जिसे हम कहते हैं सुषुप्ति गाढ़ी नींद की अवस्था, वह क्या है? अनकॉन्शियस अचेतन। पर इन तीन अवस्थाओं से परे है जिसको हम सुपर कॉन्शियस कहते हैं, अति चेतन कहते हैं, उसी को तुरीय भी कहते हैं। फ्राइड ने तुरीय को माना नहीं, इसीलिए हम देखते हैं कि फ्राइड के मनोविज्ञान में भले ही अन्य खोजें हुई, रोगी मन को थोड़ा सा आराम देने के लिए फ्राइड ने कुछ विधान किए, परंतु रोगी मन को आराम देने की अपेक्षा उन्होंने मन को और भी रोगी बनाने का उपक्रम किया। या तो हम कहेंगे, आप पढ़िए, आप पढ़ते हैं फ्राइड की बात, कल भाई लक्ष्मी निवास जी झुंझुनवाला ने फ्राइड का जिक्र किया, उल्लेख किया, कहा कि फ्राइड की जो साइकोलॉजी हावी हुई थी। मैं ऐसा कहूंगा कि एक युग था जब विश्व में फ्राइड का मनोविज्ञान बहुत हावी हुआ था और इसी कारण माताओं ने बच्चों को स्तनपान कराना बंद कर दिया था। फ्रांस में हुए और वहां पर फ्राइड ने अपना सिद्धांत घोषित किया कि मनुष्य के भीतर में काम वासना ही मोटिवेटिंग फोर्स है, वही उसके भीतर की ऊर्जा है, काम वासना ही प्रमुख है और वही धर्म का रूप लेती है, वही साहित्य का रूप लेती है, वही कला का रूप लेती है, पर काम वासना ही प्रमुख है। यहां तक कि माता अपने शिशु को जो स्तनपान कराती है वह भी उसकी काम वासना की अभिव्यक्ति है। यह जब सिद्धांत वहां पर प्रचारित किया गया फ्राइड के द्वारा, माताओं ने दुग्धपान कराना बंद कर दिया और आज आप देखते हैं दुनिया में, आप देखिए बड़े से बड़े अखबार देखिए, बड़ी से बड़ी पत्रिकाएं देखिए, वहां पर सभी जगह मिलेगा, चाहे स्वीडन हो, चाहे स्विट्जरलैंड हो, चाहे ये कॉन्टिनेंट के कोई देश हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, अब वे कह रहे हैं माताओं को मानो हिदायत दे रहे हैं, कह रहे हैं कि शिशु तो अपना पोषण तत्व मां से ही प्राप्त करता है और इसलिए स्तनपान कराना जरूरी है मां के स्वास्थ्य के लिए और उसके साथ ही साथ शिशु के स्वास्थ्य के लिए। यह तो हमारा अपना सिद्धांत रहा है और यह तो हम कहते रहे हैं कि यह जो मां शिशु को दुग्धपान कराती है तो केवल भौतिक पोषण ही नहीं देती है, वह तो उसको मानसिक पोषण देती है, उसे आध्यात्मिक पोषण प्रदान करती है, वह तंतु बनता है प्रेम का, वही तंतु जो आज तंतु बाहर के देशों में नहीं है, वह प्रेम का तंतु नहीं है। भारत में तो प्रेम का तंतु आसक्ति तक चला गया है, यहां पर तो इतना प्रेम भले ही धीरे धीरे आज की हवा में वह प्रेम टूट रहा है, वह आसक्ति का बंधन में खटक रहा है। भले ही बेटा मां को न माने, पिता को न माने, परंतु फिर भी मां की आसक्ति तो बनी ही रहती है, पुत्र के प्रति वह प्यार बना ही रहता है, उसके लिए 60 साल का लड़का भी मुन्ना ही बना रहेगा। यह तो प्यार है हमारे यहां का, आसक्ति। कितने लोग मेरे पास आते हैं कि कहते हैं महाराज उसका जरा नौकरी तो लग गई है, थोड़ा सा ट्रांसफर पास में करा दीजिए। कहाँ, कितनी दूर है? कहते हैं यहाँ से वो 50 किलोमीटर दूर है। अरे 50 किलोमीटर दूर, आसक्ति कितनी है यहाँ पर, मानो अभी भी प्यार है। क्यों प्यार है? वह हमारा तंतु है कि माँ जो दूध प्रदान करती वह स्नेह है। स्नेह कहते हैं चिकनाई को। तो मानो दुग्ध के माध्यम से केवल भौतिक पोषण ही नहीं, वह क्या क्या नहीं प्रदान कर रही है। तो यह हमारे यहाँ का सिद्धांत। तो यह जो देखा फ्राइड ने, कहा कि यह जो मन है बड़ा कलुषित है, वासनामय है, और कहा कि मन की इच्छाओं को दबाना नहीं चाहिए, सप्रेस और रिप्रेस नहीं करना चाहिए, उससे तो कुंठाएं बन जाती हैं, ग्रंथियां बन जाती हैं, मनुष्य के भीतर में कॉम्प्लेक्सेस पैदा हो जाते हैं, इसलिए इच्छाओं को खुली छूट देनी चाहिए। अब यदि हम इस सिद्धांत पर विश्वास करें कि इच्छाओं को खुली छूट देनी चाहिए, तो क्या इच्छाओं को खुली छूट देने से मेरे भीतर में कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनेंगे, ग्रंथियां नहीं बनेंगी? और क्या मुझे समाज अपनी इच्छाओं को खुली छूट देने की इजाजत देगा? देखिए, आपके पास अच्छी घड़ी देखी, मेरे मन में चोरी की भावना उठी, अब फ्राइड के सिद्धांत को मानता हुआ मैं चुराऊं, तो चुराऊं तो ठीक है, क्योंकि मेरी इच्छाएं यदि कुंठित हो जाएं, प्रशमित हो जाएं, दमित हो जाएं, तो मेरे भीतर में कुंठा पैदा होगी, तो इसलिए खुली छूट दे दो, चुरा लेता हूं। आप चुराने देंगे, आप मुझे पीटेंगे और उसके चोर के वहां पर पुलिस के हवाले करेंगे, तो इनसे कुंठाएं नहीं बनेंगे। यदि मैं कामुकता से कहीं पर भी देखूं और अपनी काम वासना को चरितार्थ करना चाहूं, खुली छूट देना चाहूं, तो क्या समाज मुझको इसकी इजाजत देगा? यह मेरी ग्रंथियों को और नहीं बढ़ाएगा? यह जिसको कहते हैं पैराडॉक्स है। तो यह पैराडॉक्स है, तो अपने चिंतन में भी स्वयं उलझे, पर इसका मतलब मैं उनके महत्व को कम नहीं करता हूं। फ्राइड ने काम किया, रोगी मन के क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किया, उन्होंने कई बातें बहुत सुंदर दी इस रोगी मन के इलाज की दिशा में, मनोचिकित्सा के क्षेत्र में। परंतु सिद्धांत की दृष्टि से हम देखते हैं उनके जो प्रमुख शिष्य थे वे ही कट करके अलग हो गए, यह भी मैं बताना चाहता हूं। तो मैं यह कह रहा था कि फ्राइड ने यह जो मन का रूप देखा क्यों, कारण यह है कि फ्राइड के पास जितने लोग आए सब रोगी मन वाले थे। जो रोगी मन आया उसी का विश्लेषण उन्होंने किया। तो जितने व्यक्तियों को फ्राइड ने देखा सब रोगी मन लेकर के आए, और इसके ऊपर फ्राइड ने सिद्धांत बना लिया कि मनुष्य का मन ही रोगी है, वह कभी ठीक ही नहीं हो सकता। केवल तीन ही अवस्थाएं उन्होंने स्वीकार की, जो तीन अवस्थाओं की बात हम कह चुके हैं, चेतन, अवचेतन और अचेतन, यह हम कह चुके हैं। चौथी अवस्था उन्होंने स्वीकार नहीं की। और भारत में मनोविज्ञान शुरू होता है पूर्णता प्राप्त मन के विवेचन से, कि योग क्या है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना, यही योग है। हमने मन को यहां से देखा कि मन जहां पर पूर्णता प्राप्त है, हमने उस मन का विश्लेषण किया और वहां से शुरू किया। और फ्राइड ने जो अत्यंत गर्हित रोगी मन वहां से शुरू किया, इसलिए दोनों के अप्रोच में, दोनों ने जिस दृष्टिकोण से देखा उन दृष्टिकोणों में इतना भारी अंतर पड़ गया। तो यहां पर भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कल मैंने आपके समक्ष वह श्लोक रखा था, अर्जुन ने कहा चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्ध्रुणम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरियो सुदुष्करम। मन तो बहुत चंचल है, बड़ा प्रमथनशील स्वभाव का है, मत ले रहा है कृष्ण, इसको पकड़ना मैं वायु के समान कठिन मानता हूं। भगवान कृष्ण अर्जुन की बात को काटते नहीं, ऐसा नहीं कहते कि अरे तू गांडीव धारी महाबली अर्जुन क्या कहता है तू, ऐसा नहीं कहते। क्या कहते हैं? अर्जुन की बात को पूरी मान्यता प्रदान करते हैं। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, संशयहीन निसंदिग्ध रूप से तू जो कहता है वह सही है। मन बड़ा दुर्जय है, बड़ा चंचल है, पर भाई ऐसे दुर्जय और चंचल मन को भी वश में किया जा सकता है। वह किया जा सकता है कैसे? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस दुर्जय मन को भी जीता जा सकता है अर्जुन। इसलिए तू हतोत्साहित मत हो, तेरे भीतर में किसी प्रकार से एक हताशा का भाव न पैदा हो। अभ्यास और वैराग्य, इन दो के सहारे, ये दो साधन ऐसे हैं जिनके द्वारा तू इस दुर्जय मन को भी जीत ले सकता है, इसे अपने वश में कर ले सकता है, यह भारतीय मनोविज्ञान है। तो यह जो ध्यान योग की साधना है, मानो यह परिप्रेक्ष्य, तो हम फ्लाइट की ओर नहीं देखते, साधना की दृष्टि से मनोचिकित्सा के क्षेत्र में ठीक है, कुछ बातें उनकी उपयोगी हो सकती हैं, पर जहां तक मन को समझने की बात है वहां पर फ्लाइट हमें मदद नहीं दे सकते। वहां यह गीता हमें सहायता प्रदान करती है, हमारे अन्य जो शास्त्र ग्रंथ वे हमें सहायता प्रदान करते हैं, यह भारतीय दृष्टि है मन को देखने की। तो यह जो ध्यान योग की साधना माने मन को निरोग करने की साधना, इसके द्वारा ग्रंथियां कट जाती हैं, ग्रंथियों का निर्माण नहीं होता कि हमने मन को दबा दिया कि ठीक है चोरी करने की इच्छा हुई और मैं अपने मन को दबा देता हूं, तो यह जो दबा देता हूं ठीक है, यहां पर दबाना तो पड़ेगा, पर साधना के क्षेत्र में जो मैं दबाता हूं तो ज्ञान को साथ में लेकर के, और जब मैं ज्ञान को साथ में लेकर के दबाता हूं तो उसको हम सप्रेशन नहीं कहते हैं, उसको हम इल्यूमिनेशन कहते हैं, उसे हम प्रदीप्त करते हैं ज्ञान के माध्यम से कि दुनिया में मेरे मन को कितनी चीजें लुभाती हैं और मैं मन को कहां कहां खुली छूट दूं, तो क्या इससे नई नई ग्रंथियां पैदा नहीं होंगी? होंगी। तो इसलिए मैं क्या करता हूं, अरे कहां तू लुभाता है, किस रूप में तू लुभाता है, कहां तू जाता है, किस रूप को तू देखना चाहता है, जरा भीतर तो देख। स्वामी राम तीर्थ के पास किसी ने कह दिया देखिए तो देखिए ये फूल कितने सुंदर है, अमेरिका की बात है, तो स्वामी राम तीर्थ ने कहा तब तो तुम यह जरूर मानोगे कि जिसने ऐसे सुंदर फूल बनाए वह तो इससे भी खूबसूरत होगा। तो ऐसा जो जिसने बनाया है, जहां खूबसूरती हमें अपनी आंखों को बाहर निकालती है, बाहर की खूबसूरती, वहां पर उस खूबसूरती की याद आ जाए जिसने यह खूबसूरती पैदा की है, यह मानो भीतर में जाने का तरीका, यह प्रशमन का तरीका नहीं, दमन का तरीका नहीं, यह जिसको हम कहेंगे कि हम प्रेस नहीं करते मन को, उसको रिप्रेस नहीं करते, सप्रेस नहीं करते, इल्यूमिन करते हैं, तो यह भारतीय साधना का तरीका है। और ऐसा जो तरीका है तो वहां पर तो कहा गया है कि उस समय जब देखते हैं उस परावर के देखते हैं, भिद्यते हृदय ग्रंथिश छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, उस परावर को एक बार देख तो लो, भीतर के उस सौंदर्यमय प्रभु को देख तो लो, एक बार देखने से हृदय की सारी ग्रंथियां खुल जाती हैं, सारी कुंठाओं का नाश हो जाता है, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं, ऐसा वह अपूर्व तत्व है, यह कहा गया। तो यह ध्यान योग मानो उसी ज्ञान में जाकर के समाहित हो गया, तब यह ध्यान योग कैसे सधे, कठिन लगता है जरूर, जैसे हम देखते हैं साधना बहुत कठिन है, हम करने जाते हैं मन विचलित होता है, तो भगवान कृष्ण आश्वस्त करते हुए कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, अभ्यास और वैराग्य इन दो के सहारे। तो अभ्यास और वैराग्य कैसे हो, यह कर्मयोग और भक्ति योग, ये दोनों अभ्यास और वैराग्य के मानो प्रतीक बनकर के हमारे सामने आते हैं। कर्मयोग हमारे भीतर के मल को दूर करता है, यदि हम कर्मयोग करें, कर्म को योग की दृष्टि से संपन्न करें, तो हमारे मन में जो मल जमा है उस मल को धोता है यह कर्मयोग, और भक्ति योग के द्वारा वैराग्य की पीठिका पर आधारित यह भक्ति योग मानो मल के शोधन में मानो हमें तीव्रता प्रदान करता है। तो भक्ति योग और कर्मयोग ये दोनों मिलकर के चलते हैं। कैसे चलते हैं, जब हम कर्म करते हैं, कर्मयोग का सिद्धांत क्या है, प्रत्येक कर्म को कर्मयोग बनाया जा सकता है, प्रत्येक कर्म को भगवान की पूजा बनाया जा सकता है, प्रत्येक कर्म को यज्ञ बनाया जा सकता है। स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिम लभते नरः, स्वकर्म निरतः सिद्धिम यथा विन्दति तत्क्षणु, अर्जुन से कहते हैं भगवान कृष्ण अंत में 18वें अध्याय के अंत अंत में उपसंहार करते हुए सारी गीता सुना देने के बाद, सुन अर्जुन अपने अपने कर्म में लगे रह करके मनुष्य ऊंची से ऊंची सिद्धि पा लेता है, कैसे सर्वोच्च सिद्धि पाता है वह उपाय तो मुझसे सुन, क्या उपाय बताते हैं, यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वमिदं ततम स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धि विन्दति मानवः, जिस सत्ता से जिस तत्व से सारा विश्व निकला और जो तत्व इस विश्व में आकर के मानो समाहित तो हो गया है, प्रविष्ट हो गया है, ओतप्रोत हो गया है, उस परम तत्व की पूजा करते हुए अभ्यर्चना करते हुए मनुष्य संसिद्धि को पा लेता है, सर्वश्रेष्ठ सिद्धि को पा लेता है, पूजा करते हुए फूल चंदन अर्पित करके पुष्पमाली अर्पित करके धूप दीप जला करके कहते हैं नहीं, स्वकर्मणा तमभ्यर्च, अपने कर्मों से उस सत्ता की पूजा करते हुए मनुष्य संसिद्धि को पा लेता है तो मेरी हर क्रिया भगवान की पूजा बन सकती है, मेरा हर कर्म यज्ञ बन सकता है। यह कर्मयोग की घोषणा है। और जब कर्मयोग यह घोषित करता है उसे पूछते हैं उपाय क्या है कि अपनी हर क्रिया को भगवान की पूजा बना लेने का उपाय, अपनी हर क्रिया को यज्ञ बना लेने का उपाय क्या है। उपाय उपाय बताते हुए कहते हैं ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम् विवाम्भसा। कहते हैं जैसे देखो कमल का पत्ता जल में रह करके जल से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार जो भगवत समर्पित बुद्धि से जीवन के कर्मों को करता है वह व्यक्ति इस संसार में रहता हुआ सांसारिकता से लिप्त नहीं होता और वह भगवान के पास चला जाता है। तो कैसे भगवत समर्पित बुद्धि से हम कर्म करें, उसी में कर्म भी आता है भक्ति भी आती है। तो कर्म और भक्तियों की चर्चा कल करेंगे, आज यहां पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।
आज तीसरा और अंतिम दिवस है जब हम लोग श्रीमद् भगवद गीता भक्ति कर्म ज्ञान एवं ध्यान योग का संगम इस विषय को लेकर अंतिम चर्चा करने जा रहे हैं। पिछले दो दिनों में हमने गीता में ज्ञान और योग यानी ध्यान योग किस प्रकार से हमारे समक्ष रखे गए हैं इस पर थोड़ा चिंतन किया। यह देखा कि ज्ञान वह मूल आधार है जिस पर गीता का भवन खड़ा हुआ है और ये चारों कर्म ज्ञान भक्ति और ध्यान उसी सिद्ध ज्ञान को प्राप्त करने के साधन हैं। भक्ति भी अंत में हमें वहीं पर पहुंचा देती है। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चा, जहां पर कहते हैं कि भक्ति के द्वारा मुझे साधक जानने में समर्थ होता है यावान यश्चास्मि तत्वतः, मैं जैसा हूं और जो हूं तत्व से वैसा जानने में वह समर्थ होता है। ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, और इस प्रकार मुझे तत्व से जान करके मेरे भीतर में प्रविष्ट हो जाता है। तो भक्ति के माध्यम से हम अंततो गत्वा उस परमात्मा को तत्व से जानने में समर्थ होते हैं। इस प्रकार हमारे समक्ष भक्ति का वर्णन हुआ है। तो विगत दो दिनों में हमने ज्ञान की चर्चा की, कल विशेष करके हमने ध्यान योग की बात आपके समक्ष रखी और यह कहा कि कैसे ध्यान योग ज्ञान की प्राप्ति में सहायक होता है। ध्यान योग का मुख्य विषय है मन को निश्चंचल बनाना। अभी मन चंचल है इसलिए मेरा जो स्वरूप है वह ठीक ढंग से प्रतिभासित नहीं होता, पर जब मन निश्चंचल हो जाता है तो जैसा मेरा स्वरूप है वैसा ही प्रतिभासित होता है। कल हमने इस पक्ष को आपके समक्ष अधिक विस्तार से रखा था, फिर यह भी कहा था कि ज्ञान की दृष्टि से पंचकोश भेदन क्या है और उसी प्रकार त्रिशरीर भेदन क्या है, हम कैसे इन पांचों कोशों से परे जाने की साधना करते हैं, कैसे तीनों शरीरों को लांघने का प्रयास करते हैं, हमें इसका संकेत दिया गया है। यह आपके सामने हमने कल बात रखी थी, इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः। हम पढ़ते हैं गीता का यह श्लोक जहां पर यह कहा गया कि जो इंद्रियां हैं वे शरीर से ऊपर हैं, शरीर से श्रेष्ठ हैं, इंद्रियों से ऊपर है मन, मन से ऊपर है बुद्धि और बुद्धि से परे है वह आत्म तत्व। यह मानो उन पांच कोशों की ओर ही संकेत करता है। शरीर से ऊपर है इंद्रियां, शरीर अन्नमय कोश है, इंद्रियों को हम प्राणमय कोश कहते हैं, इंद्रियों से ऊपर है मन मनोमय कोश, उससे परे है बुद्धि विज्ञानमय कोश। यहां पर आनंदमय कोश की बात भले नहीं आई है, सीधे ही आत्म तत्व के पास ले जाया गया, पर इसका एक तात्पर्य यह है कि जब हम आनंदमय कोश में पहुंचते हैं तो वह मानो आत्मा में पहुंचने के समान की ही अवस्था होती है, केवल एक सूक्ष्म पर्दा बना रहता है। श्री रामकृष्ण कहा करते थे षटचक्र भेदन के संबंध में, कुंडलिनी का जागरण जब वे बताते थे कि किस प्रकार वह साधित होता है तो कहते थे कि हृदय रूपी चक्र में जब कुंडलिनी शक्ति आती है नीचे से जागृत होकर के तो क्या क्या अनुभूतियां होती हैं, कंठ में आने पर साधक क्या अनुभव करता है, और भूमध्य चक्र में जिसे छठा चक्र कहते हैं जब यह कुंडलिनी शक्ति आती है तो ऐसा लगता है कि मैंने ईश्वर को देख लिया, ऐसा प्रतीत होता है कि मैंने परमात्मा को छू लिया। पर वे कहा करते थे तब भी एक क्षीण आवरण बना रहता है अहंकार का, यह कैसा है, जैसे कांच की आलमारी में रखी किताब, पुस्तक साफ दिखाई दे रही है, मैं हाथ बढ़ाता हूं पुस्तक को लेने के लिए, देखता हूं कि हाथ टकरा गया कांच में और इसीलिए मैं पुस्तक को छू नहीं पाया, पर पुस्तक बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। तो ठीक इसी प्रकार जब वह कुंडलिनी भूमध्य स्थित चक्र में आती है तो ऐसे ही दर्शन होता है। यह आनंदमय कोश का वर्णन है जिसका राजा है अहंकार, ऐसा लगता है कि मैंने परमेश्वर को पा लिया, पर एक झीना आवरण अहंकार का बना रहता है और कुंडलिनी जब उसे भी पार करके सहस्रार की ओर जाती है और सहस्रार में पहुंचती है तो मनुष्य को समाधि लग जाती है, मानो आनंदमय कोश का भी भेदन हो गया। यह श्री रामकृष्ण कहा करते थे, तो मैंने यह कहा कि गीता में ये सभी रास्ते दिखाए गए हैं, क्योंकि गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो मानव मात्र के लिए है। मनुष्य के भीतर में जितनी प्रकार की मानसिक प्रवृत्तियां हो सकती हैं, उन समस्त प्रवृत्तियों का वर्णन किया गया और इन प्रवृत्तियों के माध्यम से हम उस परम तत्व को कैसे पा सकते हैं,